लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आर्थिक याचना करते हैं कि रोबोटिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिमता की प्रगति सदैव मानव जाति की सेवा में हो। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और
सिस्टर अनुग्रह मिंज।
पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। ईश्वर कितना अच्छा होता कि तू दुष्टों का विनाश करता। रक्त पिपासु मनुष्यों, मुझसे दूर हट जाओ। वे कपट से तेरा नाम लेते और व्यर्थ ही तुझसे विद्रोह करते हैं। प्रभु, क्या मैं तेरे वैरियों से वैर न करूं? क्या मैं तेरे विरोधियों से घृणा न करूं? मैं हृदय से उनसे वैर करता हूं। मैं उन्हें अपना निज शत्रु मानता हूं। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 139वें भजन के 19 से लेकर 22 तक के पद। इन पदों की हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत विस्तृत व्याख्या की थी। इस भजन में ईश्वर की अद्भुत सृष्टि और मनुष्य की रहस्यमय रचना पर चिंतन किया गया है और इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है कि मनुष्य के कुकर्म ही सृष्टि के सौंदर्य को तहस नहस कर डालते हैं। भजनकार प्रभु ईश्वर से आर्थ याचना करता है कि वे दुष्टों को इस धरती से दूर कर दें, उन्हें नष्ट कर दें, ताकि ईश्वर की रचना स्वच्छ और सुंदर बनी रहे। दुष्ट वे लोग हैं जो ईश्वर की सृष्टि और उनकी रचनात्मक शक्ति से इनकार करते और कहते हैं कि सृष्टि तो बस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह विकास की प्रक्रिया मात्र है, इसका ईश्वर से कोई लेन देन नहीं। श्रोताओ, ईश्वर ने मनुष्यों की रचना की ताकि वे संपूर्ण सृष्टि के साथ तथा आपस में शांतिपूर्वक और सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीवन यापन कर सकें। और जो लोग मनुष्यों और सृष्टि के बीच शांति भंग करते हैं, उन्हीं को भजनकार दुष्ट और पापी कहता है। इन्हीं के लिए भजनकार कहता है, प्रभु, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न करूं? क्या मैं तेरे विरोधियों से घृणा न करूं? मैं हृदय से उनसे बैर करता हूं और उन्हें अपना निज शत्रु मानता हूं। खोखलेपन, अर्थहीनता, नैतिक मूल्यों के बांझपन और सूखेपन की वह भर्त्सना करता है। युग युगांतर तक के मनुष्यों का वह आह्वान करता है कि वे प्रभु ईश्वर के अद्भुत सृष्टि पर मनन चिंतन करें, उनके अनुपम कार्यों को स्वीकार करें, क्योंकि जो ईश्वर के कार्यों और मनुष्यों के लिए ईश योजना से इनकार करता है, जो ईश्वर की सृजनकारी शक्ति से इनकार करता है, वह ईश्वर और मानव दोनों का विरोधी है।
उठ जाग मुसाफिर,
चेतन हो अब रैन कहा जो सोता है, उठ जाग मुसाफिर चेतन हो अब रैन कहा जो सोता है, उठ जाग मुसाफिर चेतन हो अब।
आगे स्तोत्र ग्रंथ के 139वें भजन के अंतिम दो पदों में भजनकार खुद अपने अंतःकरण की जांच करता है। वह प्रभु ईश्वर से अनुरोध करता है कि वे उसके हृदय को परखें और उसकी जांच करें। ये पद इस प्रकार हैं: ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले, मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जांच ले, मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर न रखूं, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। श्रोताओं, 139वें भजन के पहले पदों में हमने देखा कि भजनकार दुष्टों को पापियों कहकर धिक्कारता है। उनके समक्ष वह मानव के लिए ईश्वरीय योजना की प्रस्तावना करता है, किंतु वे अपने अहंकार और घमंड में चूर ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार नहीं करते और अपने कुकर्मों से सृष्टि और पर्यावरण को नष्ट कर डालते हैं। वे मनुष्यों के बीच फूट डालते, उनमें विभाजन उत्पन्न करते तथा प्रभु ईश्वर की रचना की तौहीन करते हैं। हालांकि दुष्टों को धिक्कारने के बाद भजनकार स्वयं अपने विषय में चिंतित हो उठता है। अभी तक तो वह दुष्टों और कुकर्मों में लगे लोगों पर उंगली उठाता रहा था, किंतु अब वह खुद अपने अंतःकरण की जांच करना चाहता है। वह याद करता है कि चूंकि सभी मनुष्य पाप के अधीन है, सभी पापी हैं, तो वह भी पापी है। उसे धक्का सा लगता है और वह उत्कंठित हो उठता है। वह तो अन्यों पर लांछन लगा रहा था, उन्हें भला बुरा कह रहा था, किंतु वह भी उन्हीं में से एक है। इस बात का एहसास हो जाने के बाद कि वह भी मनुष्य ही है और पाप के प्रलोभन में पड़ सकता है, वह इस तथ्य के प्रति सचेत हो जाता है कि वह भी ईश्वर के न्याय के अधीन है। मनुष्य होने के नाते उसका भी न्याय किया जाएगा। श्रोताओं, यह स्पष्ट है कि भजनकार का धर्मोत्साह ही उसे इस प्रकार के चिंतन की ओर अभिमुख कर रहा था। इसीलिए वह ईश्वर से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता और कहता है, ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले, मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जांच ले। श्रोताओं को याद दिला दें कि 139वें भजन के पहले पद में भजनकार इस तथ्य की पुष्टि करता है कि ईश्वर सब कुछ को देखते और सब कुछ को जान लेते हैं। वे हमारी आत्माओं को, हमारे हृदयों को परखते हैं। प्रभु, तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटू या बैठू तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है, मैं चाहे चलू या लेटू तू देखता है, मैं जो भी कहता हूं तू सब जानता है। प्रभु, तूने मेरी थाह ली है का अर्थ है कि तूने मेरे हृदय की अतल गहराई को छुआ है। यहां परखने या जानने से तात्पर्य है पूर्ण ज्ञान से। ईश्वर को हम में से प्रत्येक के बारे में पूरा पूरा ज्ञान है। यह ऐसा ज्ञान है जो हमें ईश्वर की दृष्टि में बिल्कुल नग्न बना देता है। इसीलिए भजनकार प्रभु से निवेदन करता है कि वे उसके हृदय को परखें, उसे पहचान लें, उसकी जांच करें तथा उसकी चिंताओं को जांच कर उसकी मदद करें। श्रोताओं, वस्तुतः 139वें भजन के अंतिम दो पदों में भजनकार इस बात को स्वीकार कर रहा था कि वह भी अन्य मनुष्यों की तरह ही मनुष्य है और इसीलिए प्रलोभन में पड़ जाता है। उसकी कमजोरी उसे पाप के जाल में फंसा देती है जिससे वह बाहर आना चाहता है और इसीलिए ईश्वर को पुकार कर कहता है, ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले, मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जांच ले। मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर न रखूं, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। भजनकार का पूरा विश्वास है कि ईश्वर के संरक्षण में वह कुमार्ग पर जाने से बच सकेगा और अनंत जीवन के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा। मार्ग वे नियम हैं जो ईश्वर ने मूसा के माध्यम से मानव जाति के समक्ष प्रकट किए। मार्ग वह है जिसकी प्रकाशना प्रभु येसु मसीह ने की। प्राचीन काल में मूसा ने ईश नियमों को प्रकट किया, तो नवीन व्यवस्थान के युग में येसु ख्रीस्त मानव जाति का मार्ग बने, क्योंकि ईश्वर आदि से अनादि तक एक ही है। येसु आज भी हमें याद दिला रहे हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं।
रास्ता हूँ, सत्य हूँ और मैं जीवन पूर्ण हूँ।
रास्ता हूँ, सत्य हूँ और सत्य के आधार पर। मुझको जानो, मुझको मानो, मैं ही तो संपूर्ण हूँ। मुझको जानो, मुझको मानो, मैं ही तो संपूर्ण
हूँ। रास्ता हूँ सत्य।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को ट्वीट कर समस्त लोगों के लिए सुखद और गरिमामय जीवन और अधिक सुयोग्य दुनिया बनाने हेतु ईश्वर से कृपा मांगने हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, हे ईश्वर, हमारे मानव परिवार के पिता, आपने सभी लोगों को गरिमा में समान बनाया है। हमारे दिलों में भातृ भावना पैदा करें। हमें भूख, गरीबी, हिंसा और युद्ध के बिना स्वस्थ समाज और एक अधिक प्रतिष्ठित दुनिया बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। #FratelliTutti। और संत पापा फ्रांसिस ने अर्जेंटीना के फुटबॉल चैंपियन डिएगो अर्मांडो माराडोना के निधन के बाद उन्हें अपनी प्रार्थना में याद किया। डिएगो माराडोना का बुधवार को अर्जेंटीना के टाइग्रे में अपने घर पर 60 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। सिर्फ 60 साल की असामयिक उम्र में वे फुटबॉल की दुनिया में एक नायाब शून्य छोड़ गए हैं। दुनिया ने इस महान खिलाड़ी को खो दिया है। उसकी खेल प्रतिभा को हम फिर कभी नहीं देखेंगे। डिएगो ने संत पापा फ्रांसिस से कई अवसरों में मुलाकात की। सबसे खास बात 4 सितंबर 2014 को वाटिकन में संत पापा के निवास कासा सांता मार्था में एक चैरिटी मैच से पहले डिएगो ने संत पापा को फ्रांचेस्को के साथ प्रसिद्ध 10 नंबर की जर्सी उपहार में दिया। एक साल बाद फिर संत पापा के स्कोलास ओकुरेंतेस दुनिया भर में युवा लोगों के आंदोलन में वे संत पापा फ्रांसिस से मिले। संत पापा फ्रांसिस ने डिएगो के लिए हालिया स्वास्थ्य समस्याओं और मस्तिष्क के थक्के को हटाने के लिए सर्जरी के दौरान उनके लिए प्रार्थना की और उनकी मृत्यु के घंटे में भी प्रार्थना जारी रखा। वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने बुधवार शाम को कहा कि संत पापा हाल के वर्षों में माराडोना के साथ हुई मुलाकात को सस्नेह याद करते हैं और उन्होंने हाल ही में उनकी खराब सेहत को जानने के बाद उन्हें प्रार्थना में याद किया है। गरीबी में जन्मे डिएगो ने अपने बूटस्ट्रैप्स से खुद को ऊपर उठाया, विरोधियों को मंत्रमुग्ध किया और दुनिया भर के खेल प्रशंसकों का सम्मान अर्जित किया। मात्र 21 वर्ष में माराडोना अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी के रूप में उभर आए। माराडोना ने अर्जेंटीना के लिए 91 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 34 गोल दागे। इतना ही नहीं, उन्होंने 4 विश्व कप में अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने जीवन के अन्य पहलुओं में कड़ी मेहनत से संघर्ष किया, ड्रग्स और अल्कोहल से संबंधित समस्याओं से घिरे। माराडोना ने 1997 में अपने 37वें जन्मदिन पर प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया था। डिएगो माराडोना के निधन पर अर्जेंटीना में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक है। माराडोना के पार्थिव शरीर को राष्ट्रपति के दफ्तर कासा रोसारा में लाया गया है, जहां 3 दिनों तक लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। माराडोना की टीम में साथी रहे ओहवाल्दो आर्बिलेस ने कहा कि जितनी शोहरत और प्रशंसा माराडोना को मिली, उतनी आज के फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी और क्रिस्टियागो रोनाल्डो को भी नहीं मिली। शीर्ष स्थान के लिए डिएगो के प्रतिद्वंदी पेले ने श्रद्धांजलि में कहा, मैंने एक करीबी दोस्त खो दिया है और दुनिया ने एक महान खिलाड़ी खोया है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम दोनों आसमान में एक साथ फुटबॉल खेलेंगे। और संत पापा फ्रांसिस ने स्लोवेनिया कारितास क्लिक डोब्रोट संगीत दल की स्थापना के 30 साल के वर्षगांठ के अवसर पर उनके द्वारा संपन्न सभी उदार कार्यों के लिए आभार प्रकट करते हुए प्रशंसा का संदेश भेजा है। क्लिक डोब्रोट, जिसका अर्थ है उदारता का आह्वान करें, संगीत कार्यक्रम द्वारा और सद्भाव और एकता को बढ़ावा देते हुए अपने संदेश में संत पापा ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि इस वर्ष के क्लिक डोब्रोट को एक और कदम आगे बढ़ाना है, कलीसिया और स्लोवेनिया लोगों के बीच एकता का। संत पापा ने लिखा, प्यारे भाइयों और बहनों, जहां एकता नहीं है वहां प्रभु की आत्मा नहीं है। प्रभु हमेशा एकता चाहते हैं, जिसका मतलब एक रूपता नहीं है। समाज में विभिन्न गुणों और हुनर वाले लोग रहते हैं, उन सभी का सम्मान हमेशा एकता में आत्मा की एकता के साथ करना है। वे कहते हैं, हमें संप्रदायवादी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, हमें पार्टी के लोग नहीं होना चाहिए, जैसा कि वे अपनी 30वीं वर्षगांठ संगीत समारोह में प्रदर्शन करने की तैयारी करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने अपने संदेश में क्लिक डोब्रोट के आयोजकों और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह संगीत समारोह आपकी एकता के सद्भाव को व्यक्त करता है। फ्रांस इस सप्ताहांत क्रिसमस की छुट्टियों से पहले अपने कोविड-19 लॉकडाउन को कम करना शुरू कर देगा। एक बयान में फ्रांसीसी धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने पवित्र मिसा को फिर से शुरू करने से संबंधित उपायों पर निराशा व्यक्त की है और उन्होंने इस मामले पर स्पष्टीकरण की मांग की है। फ्रांसीसी धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने एक बयान में कहा कि अधिकतम 30 लोगों के साथ पवित्र मिसा समारोहों को फिर से शुरू करने की घोषणा निराशाजनक और आश्चर्यजनक थी। बयान में कहा गया कि इस मामले पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति और धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष एरिक डी ब्लूफोर्ट के बीच फोन में बातें हुई थी। महाधर्माध्यक्ष ने मंगलवार शाम को ट्वीट किया कि कैथोलिकों की आवाज सुनी नहीं गई और सम्मेलन की मांग है कि उपाय को संशोधित किया जाए। फ्रांस में पवित्र मिसा को फिर से शुरू करना निश्चित है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।